सबका स्नेही इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा जगती ज्योति इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के आत्मस्मृति का तिलक लगा के जगती ज्योति इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो भ्रुकुटी में जगती ज्योति। यह तन पिंजरा पांच तत्व का आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का जगती ज्योति इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्म दर्शन करा दो सबको आत्म दर्शन करा दो सबको आत्म दर्शन करा दो।
ओम शांति। आज विशेष आप सब भट्टी के लिए इस वरदानी भूमि पर तपोभूमि पर जहां बाबा मम्मा और दादियों ने कई सालों तक अपनी तपस्या के वाइब्रेशंस यहां फैलाए और दूसरा इस सीजन की भट्टी का शुभारंभ आपसे दो दिन पहले ही सारे भारत की वरिष्ठ टीचर्स बहनों का भी भट्टी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। इसी हॉल में बहनों ने भी भट्टी की है और ऐसे चार्ज हुए स्थान पर सालों से तो चार्ज है ही लेकिन दो दिन पहले भी कल ही बहनें भट्टी करके प्रस्थान किया है। ऐसी भूमि पर आप सब पहुंचे हैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत भी है और साथ में प्यारे बाप दादा भी इसी भट्टी के शुभारंभ में हमारे साथ है। बाप दादा का भी आवाहन है, स्वागत है। आपके साथ रहकर बहुत अच्छी बाबा अनुभूति भी कराएगा। यहाँ हाजिरा हजूर है, ऐसे साथ का भी अनुभव बहुत अच्छी तरह से आप सब कर सकेंगे। तो आज इस भट्टी के शुभारंभ में हमारे बीच बाबा का अमूल्य रत्न कहो, अथक सेवाधारी कहो, देश विदेश की सेवाओं के निमित्त बने हुए ज्ञान की बुलबुल कहो, ऐसी बहुत मधुर मीठी प्यारी हमारी आदरणीय शिलू बहन जी भी पधारे हैं। आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो आप सब शिलू बहन को पहचानते ही हैं। आप भी बहुत ही पुराने बाबा के अमूल्य रत्न, करीब मैं समझती हूँ 60 साल से ज्ञान बचपन से ही प्राप्त हुआ और करीब 50 साल से बाबा की इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। शुरू में अफ्रीका, मॉरिशियस आदि की भी सेवा आरंभ की और मॉरिशियस में भी 1975 में अपने सेवा केंद्र खोलने की निमित्त बने और उसके बाद तो अनेक देश, 70 से भी ज्यादा देशों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है। लेकिन विशेष सेवा आप 76 से इस बाबा की वरदानी भूमि पर कहो, बेहद सेवा में उपस्थित हो। यहाँ आप समझते हो काफी विदेशी भाई बहने आते हैं, आपका पूरा ही कम्युनिकेशन उनों के साथ भी रहा है। यहाँ आते तो भी खास बाबा की मुरली हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करने के लिए आप काफी सालों से सेवाएं दे रहे हो। और जब टीवी की सेवाएं शुरू हुई तो शुरुआत में जी जागरण पर आपने, जैसे जी टीवी, आस्था चैनल आदि भी, कई सोनी आदि में भी आपके शुरुआत की सेवाओं में, शुभारंभ में आपका ही पार्ट रहा। आपकी मधुर वाणी से सभी बहुत ही प्रभावित हुए थे और आज भी हो रहे हैं। साथ साथ आप एजुकेशन विंग के भी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हो और जो हमारी भट्टियां चलती, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो या भट्टी हो या आने वाले भाई बहनों की भट्टियां हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, आज तक आपने अपनी बहुत ही सेवाएं प्रदान की है और आप आज हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारा भी ये परम सौभाग्य है। तो आज इस भट्टी के शुभारंभ में भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे और बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता से सुनकर जो भी सुने ये 4 दिन की भट्टी के दौरान, सब बातों को महत्व देते हुए, बुद्धि में रखते हुए इस भट्टी में ही खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे सब कुछ भूल करके। तो ऐसी अनोखी भट्टी का आप सब अनुभव करते हुए संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामना है। और इस भट्टी का नाम है संपूर्ण संपन्न बनने की योग तपस्या। तो इस दिशा में भी कुछ न कुछ हमें जरूर समझ, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो अभी मैं आदरणीय शिरु बहन को नम्र निवेदन करती हूँ कि भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य आपके सामने रखे। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे बाबा मम्मा सब दादियों की कर्म भूमि, जहां सारा विश्व आता है, ऐसे स्थान पर आप सभी बट्ठी करने लिए आए हैं। तो प्यारे बाप दादा सभी दादियों की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे हमारी तृप्ति बहन ने बताया कि यह योग तपस्या हम अभी आरंभ कर रहे हैं इस सीजन में, पिछले साल तो नहीं रखी थी क्योंकि पानी पिछले साल थी लेकिन पानी नहीं मिला, तो बारिश नहीं हुई थी, तो इस साल भी काफी समय से नहीं रखी और अभी शुरू की क्योंकि थोड़ा बहुत पानी मिला है लेकिन अभी तो बारिश आनी बाकी है। बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर आप सभी यहाँ इस भट्टी में आए हैं। मैं नाम पढ़ रही थी, संपूर्ण संपन्न बनने की योग तपस्या। आप सभी को बैज मिला होगा, उस पर भी यही लिखा है ना, क्या लिखा है देखा है ना अच्छी तरह से। तो बहुत सुंदर उद्देश्य आपको मिला है कि संपन्न और संपूर्ण बनना है और उसके लिए ये योग तपस्या करने आए हैं यहाँ, अथवा कहेंगे कि भट्ठी में पकने आए हैं। तो अगले 3 दिन आप संपूर्ण रूप से इस योग तपस्या भट्ठी में पकेंगे, ऐसे कहें। तो सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि अपने अंदर जो भी कमियां, खामियां, कमजोरियां, विकृतियां, कोई अवगुण, कोई कुछ भी ऐसी बात जो बाबा के श्रीमत के खिलाफ है, विरुद्ध है, वो अपने अंदर पहले टटोलना। आत्मनिरीक्षण करने का समय आपको मिलेगा, फिर विश्लेषण भी करना है, क्या थे और क्या बन गए थे, अब फिर क्या बनना है। तो निरीक्षण करके विश्लेषण करना और फिर उसी अनुसार संयम रखना और फिर वो बोध होना, अनुभव होना अपने संपूर्ण और संपन्न स्थिति का। तो पहला लक्ष्य तो यही है कि अब आपको समय मिलेगा आत्मनिरीक्षण करने का। बहुत व्यस्त जीवन से आप यहाँ समय निकाल कर 3-4 दिन के लिए आए हैं और हम समझ सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है और यहाँ आप आए हैं तो जमीन आसमान का फर्क है ना, दिन रात का फर्क अनुभव करेंगे। वैसे तो मधुबन में तो आना होता ही होगा, ऐसे भी कोई है जो पहली बार मधुबन में आए हैं? पहली बार अच्छा, देखा ही नहीं था, पहली बार ही देख रहे हैं, अच्छा जो पहली बार मधुबन देख रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, जो मधुबन में आए तो हैं लेकिन सदा शांतिवन में रहे हैं पर यहाँ नहीं कभी रहे, वो हाथ उठाएं। वो तो बहुत ही होंगे। अच्छा, तो यहाँ रहने का पहला मौका मिला है। और जो पुराने होंगे वो तो मधुबन में काफी समय रहे भी होंगे, तो जो मधुबन में रह चुके हैं पहले भी, वो हाथ उठाएं, पुराने होंगे वो। अच्छा, लगभग बराबर बराबर है। तो बहुत सुंदर ग्रुप है आप सबका। हम तो कई बार कहते हैं कि प्रोग्राम तो कईयों का बना होगा, वैसे तो कईयों की इच्छा होगी कि हम भी भट्टी करने जाएं, हम भी भट्टी करने जाएं। हमारी बहनों को तो काफी प्रॉब्लम हुई होगी, किसको हाँ कहें किसको ना कहें, है ना? ऐसे था ना? हाँ, ऐसे था ना कि नहीं उषा बहन? किसको हाँ कहें किसको ना कहें, सबकी इच्छा जरूर होगी। और फिर जब टिकट आ गई तो आपको विश्वास हो गया कि हम जरूर जाएंगे। लेकिन विश्वास होने के बाद भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई होगी कुछ भाई बहनों की, जो रिजर्वेशन होते हुए भी वो आ नहीं सके। और ऐसे भी कुछ भाई बहने होंगे जिनका मन चित में भी नहीं था कि जाना है, और अचानक उसी दिन कहा आप जाना चाहते हो तो लॉटरी लग गई है। ऐसे भी होगा। तो जिनका कंफर्म था वो रह गए, और जिनको अचानक कहा वो पहुंच गए। तो हम तो कहते हैं जो पहुंच गए वो बहुत भाग्यशाली हैं, पहुंच गए हैं, अपने लिए ताली बजाओ। अभी अगले 3-4 दिन कम से कम, सुबह से लेकर रात्रि तक आप भट्टी में पकेंगे। भट्टी किसको कहते हैं? भट्ठा होता है ना, ईंटों का भट्ठा होता है, उसमें ईंटें पकती है। और सोने का भी होता है, सोने को भी गलाते हैं, क्योंकि भट्ठा कहो भट्टी कहो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। और अग्नि में जो चीज पड़ती है वो वापस उसी रूप में बाहर नहीं आती है, परिवर्तित होके आती है। आप आलू टमाटर बैंगन भी आग में डालते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, पर जैसे ही आग में डाला तो क्या हो जाता है? बैंगन डालो बर्था बन जाएगा। आलू को भी आग में डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो कठोर चीज है वो सॉफ्ट मुलायम बन जाएगी। अर्थात जो कठोर संस्कार हैं जिसके लिए हम समझते रहे आज तक कि भाई ये तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ये तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस भट्टी में परिवर्तन करना आपके लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर आप मेहनत करेंगे। या दूसरे कई बार बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट माना इमोशनल, बहुत भावुक, कई लोग बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बात में रोना आ जाता है, छोटी छोटी बात में कैसे बिल्कुल स्थिति डावाडोल हो जाती है। तो वो भी मानो बहुत ही नरम है, मुलायम तो अच्छी चीज है लेकिन जल्दी टूटने वाली चीज। तो यहाँ आकर जैसे मिट्टी ईंट, परंतु भट्ठे में पड़ने से वो ईंट कैसी हो जाती है? एकदम मजबूत। कितनी मजबूत है तो मिट्टी, लेकिन वो इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर उसको वो गिरेगी भी तो भी टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत होती है, नहीं तो है तो मिट्टी। तो जो भी ऐसे बहुत भावुक हैं, जल्दी जल्दी अपसेट होते हैं, जल्दी जल्दी अपमानित महसूस करते हैं या कोई शक्ति की कमी है, तो यहाँ आत्मनिरीक्षण करने से आपको वो महसूस होगा कि हमारे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है और हम इतना मजबूत हो रहे, इतना मजबूत कि कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति कभी हिलेगी नहीं, अंगद के समान रहेगी। और अग्नि में कई चीजें पड़ती है, काला कोयला भी पड़ता है और कैसा बन जाता है, राख बदल जाता है, रंग बदलता है, सोना भी पड़ता है तो खाद निकल जाती है दूसरे, क्योंकि सोने में जो और धातु पड़ते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट पिघलने की जो का जो टेम्परेचर है वो सोने से कम होता है, तो वो जैसे उनको टेम्परेचर मिलता है वो पिघलते जाते हैं और सोना ऊपर रह जाता है। तो सच्चा सोना बनना है, खाद निकालनी है, और ऐसा सच्चा सोना जो सचमुच उस सोने की दुनिया में हम ऊंच पद पा सके, ऐसा सच्चा सोना बन करके निकलना है। तो इस भट्टी में ऐसा सच्चा सोना बनना है, जो भी अंदर में छल कपट झूठ या जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाए, और आप जैसे वापस जाएं तो सब महसूस करें, अरे ये तो बिल्कुल बदल गया, ये तो बिल्कुल बदल गई, ऐसा क्या जादू लगा। वैसे तो जैसे आप ज्ञान में आए होंगे परिवर्तन तो हुआ ही होगा, लेकिन अब और परिवर्तन, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है। भट्टी का देखो क्या उद्देश्य है, संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, जिसको हम कहेंगे बाप समान। तो बाप समान बनना ये कितना ऊंचा उद्देश्य है। ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं तपस्या की, क्या नहीं मेहनत की अपने ऊपर, और उसके आधार से कितना परिवर्तन अपने जीवन में लाया। ये तो थे तो हमारे ही तरह ना, कई बुजुर्ग बाबा के पास आते थे और बाबा को कहते थे बाबा अभी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी हमारे से ये मेहनत पहुंचती नहीं है, कहाँ अमृत वेले उठना, कहाँ ये सब तपस्या करना, इतना नहीं होता है। तो बाबा कहते थे ये बूढ़ा कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो, ये भी तो बूढ़ा था ना, 93 वर्ष की उम्र कोई कम नहीं थी, तो ये कर सकता है तो आप बच्चे क्यों नहीं कर सकते हो, शरीर की आयु कितनी भी हो लेकिन कर सकते हो। फिर कोई जवान आते थे तो जवान बाबा को कहते थे बाबा अभी तो हमने कोई दुनिया ही नहीं देखी है, अभी ये सब कैसे छोड़ेंगे, कैसे त्याग होगा, कैसे होगा, मुश्किल है। तो बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा जवान, कितनी जवान, लेकिन उस जवानी में मम्मा ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, जिसके आधार से वो विदेही बनी और कैसे जल्दी जल्दी कर्मातीत बनी, वो भी एक उदाहरण है। तो बाबा और मम्मा हमारे लिए उदाहरण है, जवानों के लिए मम्मा है और बुजुर्गों के लिए बाबा है, तो ये दोनों तो हमारे आगे उदाहरण है ही है। और दादियों को भी हमने देखा, क्या नहीं उनकी तपस्या थी, उनसे ही प्रेरणा लेकर के कैसे हम सब ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। परंतु मैं तो कहूंगी मेरा ये सौभाग्य था कि मम्मा बाबा से भी हम मिले, क्योंकि 1960 में मैं ज्ञान में आई, 1960 में जब 12 वर्ष की आयु थी, तो इसीलिए वो भी बाबा मम्मा का भी अनुभव है, दादियों का तो पूरा ही अनुभव है, और मधुबन में रहने के कारण तो सबके साथ का अनुभव है, और मुंबई में रहे, मुंबई में जन्म भूमि है मुंबई और कर्म भूमि भी मुंबई, और बाबा मम्मा दादियाँ सब मुंबई में आते थे, तो इसीलिए हम तो अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हमने पाया, भल हम कहेंगे आपने वो नहीं पाया, लेकिन हमने जो पाया वो आप तक अवश्य पहुंचा सकते हैं, वो प्रेरणा अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन बाबा ने हमें बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। किसको कहेंगे संपन्न और संपूर्ण? जैसे चंद्रमा को हम देखते हैं, पूर्णमासी पर संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना पूर्ण प्रकाश, फुल प्रकाश, भरपूर प्रकाश पूर्णमासी पर, और सारे आकाश को एक चंद्रमा ही पर्याप्त होता है प्रकाशित करने के लिए पूर्णमासी पर, तो वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है, गोल, पूरा ही गोल। तो संपूर्ण माना कंप्लीट और संपन्न माना फुल, तो भरपूर और पूर्ण, तो पूर्ण भी हो और भरपूर भी हो, ऐसा हमें बनना है। तो हम आत्माएं जो थी अपने अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में, उस स्वरूप तक वापस हमें पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लक्ष्य छोटे छोटे रखे जाते हैं, होता है ना, कई लक्ष्य होते हैं ना, जिसको हम गोल कहते हैं। एक साल का लक्ष्य होता है, दो साल का लक्ष्य होता है, तीन साल का, पांच साल का, ये लक्ष्य होता है कि पांच साल में ये करना है, एक साल में ये करना है, एक दिन में ये करना है, एक तीन दिन में करना है, एक महीने में करना है, वो उनको हम गोल कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं, और उस लक्ष्य के मुताबिक उस उद्देश्य तक पहुंचना है। तो संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए क्या लक्ष्य रखना है? सबसे पहला लक्ष्य तो हमें यही रखना है कि जितना हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे उतना हम उस उद्देश्य के नजदीक जाएंगे। हमें किसी और को नहीं देखना है। हम जब किसी और को देखते हैं तो हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति बहुत व्यर्थ जाते हैं और माया के आने की बहुत संभावना हो जाती है, क्योंकि भेंट करते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी से भी अपनी भेंट मत करो, किसी से भी नहीं करो, क्योंकि भेंट करेंगे तो या तो हीनता की भावना आएगी कि ये तो कितना पुरुषार्थ कर रहा है और मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शायद इसके लायक नहीं हूँ, तो हीनता की भावना आ जाएगी। और अगर हम देख रहे हैं दूसरे का इतना नहीं है, मेरा बहुत अच्छा अभ्यास और अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, तो थोड़ा अभिमान भी आ सकता है, हाँ मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ। तो या तो हीनता आएगी, हीनता की भावना जागेगी, या तो थोड़ा अभिमान आ जाएगा अगर दूसरों को देखते हैं। और दोनों ही माया है, बिल्कुल बहुत बड़ी माया है। हाँ, जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं ना कि हम दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त करते हैं। अज्ञान, मनुष्य ज्ञान ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त करते हैं। एक अज्ञान जो दुनिया वालों के आगे व्यक्त करते हैं और दूसरा अज्ञान जो भगवान के आगे व्यक्त करते हैं। दुनिया के आगे क्या अज्ञान व्यक्त करते हैं? मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं वो धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। सांसारिक उपलब्धियों का घमंड होता है, होता है, और कई उसको स्वाभाविक समझते, वो तो होगा ना, ऐसे कहते भी हैं, तो उसका अभिमान होता है। और हम जानते हैं अगर ऐसी भौतिक उपलब्धियों का अभिमान रखते हैं तो एक दिन निराशा हार जरूर आती है, क्योंकि ये सब विनाशी है। आज जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, है तो सब विनाशी, आज या कल नहीं होगी, तो उसका अभिमान रखना तो निरर्थक है। और भगवान के आगे फिर कितनी हीनता व्यक्त करते हैं, आरती में क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी। तो जो नीच से नीच शब्द है ना, वो अपने लिए यूज करते हैं। तो भगवान के आगे एकदम अपने आप को हीन समझते हैं, और दुनिया के आगे अपने आप को मेरे जैसा कोई नहीं है। तो दोनों ही अज्ञान है। तो हम क्या समझाते हैं नयों को, जब आत्मा का परिचय देते हैं तो हम यही कहते हैं ना, तो आप न वो नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा चरणों की धूल मिट्टी मूरख निर्बल है, न जाने क्या क्या शब्द यूज किए, अन्न सेठ साहूकार फलाना फलाना फलाना। लेकिन सत्य ज्ञान क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ जो पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये अपने आप को पहचानो, यही ज्ञान है। और यही ज्ञान परमात्मा आकर हमें देते हैं, जिसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ज्ञान दो। तो ये ज्ञान जब आत्मा को मिल जाता है तो जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता है, अपनी पहचान मिल जाती है। अब ये तो हम दुनिया वालों को कहते हैं, लेकिन अपने को हम क्या कहेंगे? अगर जिसका कम पुरुषार्थ है उसको देखा तो अभिमान आ सकता है, और जिसका ज्यादा पुरुषार्थ है उनको देखा तो हीनता की भावना आ सकती है। इसलिए किसी से भी अपनी भेंट नहीं करनी है, किसी को भी देखना नहीं है। अगर देखना है, अगर भेंट करनी भी है तो अपने से ही भेंट करो। कल से मैं आज कितना आगे गया हूँ, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। चार्ट के लिए क्यों बाबा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि चार्ट से पता चलता है कि कल से आज मैं कितना और अच्छा हुआ, आज से कल और कितना अच्छा हो सकता हूँ, कल से परसों कितना और अच्छा हो सकता हूँ। तो अपने से भेंट, और जब हम अपने से भेंट करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारी उन्नति होगी। अगर दूसरों से भेंट करेंगे तो कभी भी हमारी उन्नति नहीं होगी। और जैसे बाबा कहते हैं हर एक का पाठ अपना अपना, एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसीलिए भेंट करने की तो कोई बात ही नहीं है किसी से भी, क्योंकि सबका पाठ अपना अपना है। राजधानी स्थापन हो रही है, उस राजधानी में सब चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तो सब चाहिए राजधानी में, इसीलिए भावी कोई कैसा भी है, परंतु बाबा हमको ऊंचा लक्ष्य तो देंगे ही ना, उद्देश्य तो बहुत ऊंचा ही है। तो अगर देखना भी है तो अपने से भेंट करो या बाबा से भेंट करो। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, कोई भी कर्म करो, कोई भी वचन बोलो, कोई भी संकल्प करो, उस समय पहले ये सोचो अगर बाबा इस समय यहाँ होते तो बाबा कैसे करते, बाबा क्या करते। इसलिए कई किताबें बनी हैं, ब्रह्मा बाप के 10 कदम, ब्रह्मा बाप के 50 कदम है, कई किताबें आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी हाथ उठाए। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, 20 कदम, 50, बहुत सारे वो किताब है। थोड़ों नहीं पढ़ी है, बाकियों ने नहीं पढ़ी है हा? अच्छा, जरूर पढ़ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, कैसे अपने जीवन में बैलेंस बनाया, जिसके आधार पर कितना आगे गए, कितना पुरुषार्थ उनका था जिसके आधार से संपूर्णता को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके पुरुषार्थ हो, न कि किसी आत्मा को देख करके। और फिर बाबा ने हमें बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया है संगम युग का। संगम पर हमें, हम ब्राह्मण तो है ही, लेकिन हमें फरिश्ता बनना है। देवता तो बाद में बनेंगे, परंतु अभी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसको कहते हैं वो भी बाबा बताते हैं। पहला पहला कदम फरिश्ता का यही होता है कि जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श अर्थात ये देह अभिमान, जो देह अभिमान में हम बार बार आते हैं, उस देह अभिमान से हम परे हो जाएं, अशरीरी बन जाएं। कई हमसे प्रश्न करते हैं कि देही अभिमानी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति, इसमें अंतर क्या है, क्या अंतर है? तो देही अभिमानी, जिसको बाबा बार बार मुरली में कहते हैं कि मैं आत्मा, कोई भी कर्म करूं मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं, ये देही अभिमानी स्थिति है। तो जब आत्मिक स्थिति है और आत्मा समझकर आत्मा को देखते हैं, सबकी भ्रकुटी में आत्मा चमक रही है, तो उससे क्या होगा, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब परिवर्तित होगी। परंतु जैसे देह पर दृष्टि गई तो पुरानी स्मृतियां बहुत आ जाएगी, वृत्ति भी कुछ हमारी ऐसी बन सकती है। तो इसीलिए देही अभिमानी स्थिति माना चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, कोई भी कर्म हो, वचन भी मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। नयों को तो हम समझाते लेकिन हम कितना उसको प्रैक्टिकल में करते हैं, और तब जब ये होगा तब हमारी चाल कैसी होगी, कहते हैं ना फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की चाल, हमारी मम्मा बिल्कुल उनकी चाल जैसे फरिश्तों की थी। मम्मा देखती थी कि कोई ऐसे ना भाई या बहने चलते थे ना ठप 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 करते हुए, बहुत आवाज, चलने की आवाज, जूता उनका ऐसा होता था जो फर्श पर जैसे रखते थे तो बहुत आवाज होती थी। तो मम्मा कई बार कहती थी देखो ये भी धरती को हम दुख दे रहे हैं, धरती को दुख दे रहे हैं ना, आवाज करते ठक 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 ठक। तो फरिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं फर्श से ऊपर, उनका पैर धरती पर नहीं पड़ता। अब हम उस रूप से तो फरिश्ते नहीं बने हैं लेकिन हम उस प्रकार की चाल तो चल सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। और फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति या विदेही स्थिति। तो विदेही स्थिति कहो या व्यक्त स्थिति कहो कि व्यक्त में रहते हुए व्यक्त से परे या देह में रहते हुए विदेह। तो अर्थात जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते राजा जनक के समान नष्टो मोहा, सब कुछ करते हुए भी किसी में मोह नहीं, मेरा ये राज्य है, मेरा ये मैं राजा हूँ। राजा जनक कैसे निर्मोही राजा थे, नष्टो मोहा थे, या कहेंगे कि कमल फूल सदृश उनका जीवन था। तो राजा होते हुए भी न्यारा प्यारा थे। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही देखा, प्रॉपर्टी तो सारी उनकी थी जो यज्ञ में लगाई, माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दी, विल कर दी उनके नाम पर, जैसे शिव बाबा ने कहा। उसके बाद तो फिर मुड़के नहीं देखा कि मेरा धन कहाँ लग रहा है, वो कैसे वो सब संभालने वाले दूसरे हो गए, मम्मा को निमित्त बनाया आगे रखा। तो इसको कहते हैं विदेह स्थिति, राजा जनक के समान। जैसे राजा जनक राजाई में रहते हुए भी न्यारा रहा, तो वैसे हमें भी रहना है। इसको कहेंगे विदेह स्थिति, व्यक्त में रहते भी अव्यक्त महसूस था, ऐसे लगे जैसे ये शरीर नहीं है लेकिन प्रकाश की देह है, फरिश्ते की देह है, इस प्रकार अनुभव हो। और फिर अशरीरी, अशरीरी जब हम योग में बैठते हैं तो बिल्कुल अशरीरी अवस्था हो जाए, क्योंकि ये अशरीरी अवस्था ही हमको अंत में बहुत काम आएगी। जब और कोई बुद्धि में नहीं होगा, किसी की याद नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो अंत में एक बाबा ही याद रहे और मैं बिल्कुल अशरीरी होके, जैसे अगर शरीर भी छोड़ूं तो जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए, ये अनुभव ये तब होगा जब अशरीरी रहने का बहुत काल का अभ्यास होगा। इसलिए बाबा कई बार कहते, पहला पाठ सो अंतिम पाठ। शुरू शुरू में जब यज्ञ की शुरुआत हुई तब उस समय और कोई ज्ञान कोई ज्यादा नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल आत्मा का ही ज्ञान था, आत्मा का, सिर्फ आत्मा। बाबा ने खुद कितनी मेहनत की अपने ऊपर आत्मा समझने की, आत्मा देखने की, जिससे वो नष्टो मोहा हो सके। बाबा कई बार मिसाल देते थे कि बाबा का अपने लौकिक बहू में बहुत मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी, जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, बहुत सुंदर भी थी, बहुत अच्छे रॉयल फैमिली की थी। तो बाबा ज्वेलर थे, तो जैसे बाबा उनको अपने जैसे पब्लिसिटी कराते ना, तो बाबा उनसे करवाते थे पब्लिसिटी। कैसे? राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे बाबा उनको, बहू को। तो और जो गहने बाबा को बेचने होते थे रानियों को, क्योंकि रानियां तो नहीं आएगी ना बाबा की दुकान में, जो कलकत्ते में उनकी दुकान थी। तो राजा लोग बाबा को अपने घर अपने महल में बुलाते थे कि आपके गहने हमें खरीदने हैं, हीरों के गहने। तो बाबा अपने बहू को सजा करके ले जाते थे, और वो रानी बाबा की बहू को देखती थी, ब्रिजेंद्रा दादी को, हाँ बस ऐसा ही हमको, ऐसा ही नेकलेस चाहिए, बस ऐसा ही चाहिए। और बाबा बहुत होशियार थे, पहले से ही दूसरा लेके जाते थे, लेके जाते थे, ताकि मुझे उनको पता था कि ये वही पसंद करेगी, कि सुंदर तो थी तो सुंदर पर और गहने पहने तो और भी सुंदर लगते, गहने भी सुंदर लगते हैं। तो ऐसे थी, तो बाबा का बहुत मोह था ब्रिजेंद्रा दादी में। लेकिन जब बाबा को ये ज्ञान मिला, अभी मोह तो हटाना है, तो कैसे बाबा ने मोह हटाया? बाबा दीवारों पर लिखते थे, बाबा ब्रिजेंद्रा दादी का नाम राधे था, राधे आत्मा है, राधे आत्मा है, राधे आत्मा है, ताकि खुद भी पढ़े और राधे भी पढ़े कि बाबा को आत्मा, नहीं तो वो घूंघट करती थी बाबा के आगे। उस समय तो बहू ससुर के आगे तो घूंघट करेगी ना, तो घूंघट करती थी। लेकिन उनको आत्मा देखना और वो भी बाबा को आत्मा देखे, उस हिसाब से बाबा ने कैसे सबके घूंघट ही हटवा दिए, सब हटवा दिए बाबा ने, सब शिव शक्तियां हो गई। और बाबा की लौकिक युगल यशोदा, उनका भी आपने फोटो देखा, वो भी बहुत घूंघट करती थी। और कैसे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, बस वो सब जगह लिखते थे, ताकि बाबा भी उनको आत्मा रूप में देखे और वो भी बाबा को आत्मा रूप में देखे, अर्थात अनुभव करे, ये सब देह का भान खत्म हो जाए। तो कैसे यज्ञ में जब शुरू में आए तो जो लौकिकता थी वो एकदम खत्म हो गई। मम्मा की लौकिक माँ, माँ अपने बेटी को मम्मा कहे, बताओ, बेटी माँ को बेटी कहे और माँ बेटी को माँ कहे, ये परिवर्तन आ गया। पर सबसे पहले बाबा ने शुरू किया मम्मा कहना, क्योंकि ये तो कितनी छोटी थी, इनसे तो बहुत बड़ी बड़ी थी दादियां, जो और बड़ी बड़ी थी, ये तो 16-17 साल की थी, तो और तो बहुत बड़ी बड़ी दादियां थी ना, और इनसे तो बहुत आयु में बड़ी थी। लेकिन बाबा ने शुरू किया इनको मम्मा कहना, तो सब जो बुजुर्ग थी वो भी इनको मम्मा कहने लगी, और कैसे माँ के संस्कार आ गए। तो देखो, परंतु इन्होंने अभ्यास जो किया वो अशरीरीपन का अभ्यास, ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल फरिश्ता। तो वो आपको यहाँ 3 दिन ऐसा अनुभव करना है और मौन में रहना है। जितना आप मौन में रहेंगे उतना आप ये अभ्यास सहज कर सकेंगे। क्योंकि मौन में रहना है, पहले मुख पर कंट्रोल करना है। ये अगर बुद्धि में होगा ना तो संकल्प भी ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि बोलना नहीं है। तो मुख का मौन से धीरे धीरे कैसे मन का मौन भी होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत यहाँ सोचने की? खाना वाना पकाना नहीं है, 25 सेवाधारियों को साथ में ले आए होंगे, वो सेवा करेंगे। नहीं लाए ना 25 और सेवाधारी अभी मुझे मिले, क्योंकि काफियों को मैं जानती हूँ पुराने, तो काम तो हम तो सेवाधारी के रूप में आए हैं फरीदाबाद से, लेकिन सेवाधारी के रूप में। तो क्योंकि हमने उनसे पूछा भट्टी करेंगे, बहुत पुरानी बहन, तो कहा नहीं हम तो सेवाधारी बन के आए, तो वो सेवा करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, न सब्जी काटनी है, न रोटी बनानी है, न भाइयों को कहीं दफ्तर जाना है, और मोबाइल सब बंद। सब बंद कर सकेंगे ना मोबाइल 3 दिन। आज सबको घर में जवाब वो पहुंच दे दो कि हम आराम से मधुबन में पहुंच गए हैं, अभी अगले 3 दिन हमको कोई फोन नहीं करे, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ये हो सकता है ना? हाँ, यहाँ मोबाइल बजने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके पास खिलौना है, ये खिलौना आजकल सबके पास हो गया है, और बहुत आदत ये बुरी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसमें भी संयम चाहिए कि मोबाइल को देखना ही नहीं है, बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो, कोई जरूरत नहीं है किसी भी बात की। तो 3 दिन बिल्कुल एक स्वर्गीय अनुभूति आपको यहाँ करनी है, क्योंकि यही हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, अपना आत्मनिरीक्षण करना। बहुत सुंदर सुंदर आपके क्लासेस होंगे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा। खास देखो भट्टी बाना सुबह से लेकर रात्रि तक श्रवण शक्ति भी आपकी इतनी ही पावरफुल हो, तो और कुछ बातें कानों में जाएंगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि और कहीं जाएगी नहीं। और वैसे तो बारिश का मौसम तो चालू हो ही गया, सब छाते वाते तो लाए ना, सब लेकर आए कि नहीं लाए? हाँ, सभी लेकर के आए होंगे। और जब बारिश अच्छी पड़ती है, फॉगी भी होती है, तो थोड़ी ठंडक भी होती है, कुछ तो गर्म कपड़े भी लाए होंगे ना आप? कई कहते बहन जी दिल्ली में तो इतनी गर्मी थी, सोचा भी नहीं था कि गर्म कपड़े ले जाने हैं, लेकिन ये तो पहाड़ है ना, तो यहाँ तो जैसे ही बारिश पड़ेगी ना, फॉग होगी तो ठंडक चालू हो जाएगी, तो दिन में तो फिर गर्म। हाँ जी, हाँ सब कुछ लेकर के आए होंगे जरूर, इसीलिए निश्चिंत होकर के आप 3 दिन भट्टी करना, और बस एक बाबा दूसरा न कोई, सब संबंध एक बाबा से, और सब बातों से बुद्धि का किनारा, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ ऐसे मन में आई ना कोई बात, तो कह दो नहीं, फुल स्टॉप, ब्रेक लगा दो, और 1 सेकंड में उनसे न्यारे हो जाओ। तो यहाँ भी आकर के बैठे बिल्कुल जैसे अशरीरी फरिश्ता आत्मा बन के बैठे, और यही उद्देश्य हो, मुझे बाप समान बनना है, क्योंकि ये आपको मौका है, अपने आप को भरने का मौका। क्योंकि बाबा ने हमें 3 शब्द दे दिए हैं, 1 शब्द बाबा ने दिया है अचानक, दूसरा शब्द दिया है एवर रेडी, और तीसरा है बहुत काल का अभ्यास। अगर कुछ भी होगा अचानक होगा, और अचानक के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि सब अचानक होगा। इतना बाबा विनाश की बातें मुरली में कहते हैं, क्या नहीं कहते बाबा, तैयारी बाबा तैयार हमें कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ होगा पहले से पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक होगा, तो अचानक के लिए हम कितना तैयार हैं, और उस अचानक के होगा इसलिए एवर रेडी रहना है, सदा तैयार, बैग बैगेज बंद, कुछ भी बाद में याद ना आए, एवर रेडी। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो बाबा कहते अंत में ये ये खाना है, वो खाना है, वो याद आएगा, हाय फलानी चीज फलानी चीज, वो सब याद आएगा, पर कुछ याद ना आए। इसलिए देही अभिमानी स्थिति, साथ साथ अव्यक्त स्थिति और अशरीरी स्थिति, ये हमें यहाँ 3 दिन मूल रूप से अनुभव करना है, तभी हम संपन्न भी बनेंगे, संपूर्ण भी बनेंगे, फरिश्ता बन करके उड़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ आप कल से तो आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, परंतु अभी 7:30 बज रहे हैं, कुछ सुना ना आपको कांगे जी, अभी बता दो थोड़ा। शशि बेन अभी नहीं, वो 7:30 के गीत के बाद तो वो गीत गाएंगे ना, आ रहे हैं, और उसके बाद शशि बेन आएगी, गीत के बाद ही आएगी। आप लाए हो, और तृप्ति बहन आपकी यहाँ कोऑर्डिनेटर रहेगी, मैं तृप्ति बहन को कहूंगी वो भी अपना परिचय आपको दे। तृप्ति बहन पूरा एक सब जोन संभालती है, भावनगर गुजरात में तृप्ति बहन संभालते हैं, बहुत सारे सेंटर संभालती है, लेकिन आप लोग बहुत लकी हो जो ऐसी बहन आपको मिली है, जो 3 दिन आपका पूरा आपका ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी, कुछ भी हो तो आप उनसे जरूर बात पूछना। तो बहुत बहुत आपको मुबारक है, मुबारक है, आप मधुबन में आए और ये 3 दिन इतनी बट्टी करके ऐसे तृप्त होकर के जाना, पूरा परिवर्तन करने जाना, करके जाना, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है आपके प्रति। ओम शांति।
आज बट्टी के शुभारंभ में आदरणीय शिलू बहन हमारे सामने उपस्थित हुए और अनुभव युक्त आपकी वाणी से सबको बहुत बहुत खुशी हुई, तो हम एक हाथ की ताली से आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत
इसके बाद ताली नहीं बजाना, एक हाथ
से तो आवाज नहीं होगा। तो शिलू बहन जी ने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव से संपन्न संपूर्णता की ओर कैसे जा सकते हैं वो बातें स्पष्ट की है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, स्मृति में रखते हुए, उसके स्वरूप बनते हुए 3 दिन में आगे बढ़ना है और अच्छी अनुभूति करना है। ये दृढ़ संकल्प होगा तो बाबा भी अपनी ओर से, बाबा की मदद से भी हम अच्छी स्थिति पर पहुंच
आप
पाएंगे।
भी अपना दे दो।
अच्छा, नाम तो बताया अभी,
तृप्ति बहन। हाँ। सदा तृप्त रहती है।
अच्छा, तो करीब 50 साल से ज्ञान में, 40 साल से हूँ, 69 से माना, 40 साल से ज्ञान में हूँ और 50 हुए। अच्छा ठीक, मैंने बोला लेकिन मुझे संशय, इतने साल हो गए होंगे क्या ये सोच चली, तो सोचा 40 हुए होंगे।
नहीं नहीं, 50 हो गए,
50 हो गए हैं।
बाबा को 50 साल हो गए।
हाँ बस, तो 50 साल हो गए,
50 साल अव्यक्त बाप दादा को हो गए।
हाँ जी, तो उसी साल में बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, गुजरात बड़ौदा से ज्ञान मिला और 75 से हमने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और वर्तमान समय भावनगर में ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ और समय प्रति समय ऐसी बेहद यज्ञ की सेवा में भी चांस मिलता है, तो सबके भट्टी के साथ हमारी भी भट्टी हुई जाती है, इसलिए भी अच्छा मौका हमें भी मिला है।